अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशील। अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशील। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दिए रूप गोस्वामी। ये प्यार है मध्य लीला के 19वें अध्याय का 148 नंबर है, उसमें नहीं है। इससे जीरोक्स कराए होते तो भी आ गया होता तो किताब से। ठीक है, एक बार श्लोक को बोलिए। अन्य फिर से एक बार साथ में सब लोग प्रयास। कृष्ण स्वरूप जी माइक ले लीजिए, इस श्लोक के विषय में कुछ भी बोलिए। इस श्लोक में जो तथ्य है, कई एक तथ्य है, तो एक दो तथ्य को आप बोलिए कोई तथ्य।
अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माधु अनावृतम। अन्य अभिलाषाओं से सुन्न होकर ज्ञान कर्म से अनावृत होकर अनुकूल भाव से कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उपमा, अने जो उत्तम भक्ति है।
ठीक ठीक ठीक।
उत्तम भक्ति है, मतलब अन्य अभिलाषाओं से सुन्न होती है।
एक बात बतला रहे हैं कि उत्तम भक्ति के लिए ये आवश्यक है कि अन्य अभिलाषिता से शून्य। ठीक, तो अभिलाषा और अभिलाषिता का अंतर किया गया था। अभिलाषा शब्द नहीं है यहाँ। कौन शब्द है? कृष्ण स्वरूप बोलो, देख करके बोलो। श्लोक में अभिलाषा शब्द नहीं है, क्या शब्द है?
अभिलाषता शून्य,
अभिलाषिता। किससे बोलिए?
अभिलाषता,
अभिलाषिता,
अभिलाषिता।
देखिए, कुछ लोगों को निश्चित रूप से कठिनाई होगी। जैसे वो लड़का आश्रम से आता है, क्या उसका नाम है? आए नहीं, वो गुरुकुल बिल्डिंग से आते हैं ना, तो दो दिन मैं पूछा क्यों लेटा, कि नींद लग गई थी सो गया था। आज मैं आ रहा था तो स्नान करने जा रहा था। आए तो आपको साथ लाना चाहिए ना। ठीक 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 है। तो श्लोक में अभिलाषा शब्द नहीं है, क्या शब्द है? अभिलाषा और अभिलाषिता में कल कुछ अंतर किया गया है। कौन बतलाएगा अंतर को? वृंदावन बिहारी बतलाइए। माइक दे दीजिए, आगे दे दीजिए।
अभिलाषिता मतलब जो अभिलाषा करने की वृत्ति है।
हाँ, अभिलाषा का स्वभाव बन जाए, वृत्ति बन जाए, तो इसको अभिलाषिता कहें। तो अभिलाषा शब्द के जगह पर अभिलाषिता शब्द दिए। इसका आशय यह है, विषम परिस्थिति में आकस्मिक रूप से मन में कोई अभिलाषा आ जाती है तो उससे उत्तमा भक्ति नष्ट नहीं, उसकी क्षति नहीं होगी। खास करके प्राण पर संकट है और क्या, तो अब माइक आवाज आप लोग बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम भोजन करने के लिए नहीं माइक प्रस्तुत है ना, भोजन जैसा नहीं इसको मुख में रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूरी उतनी है ना, कुछ अंतर हो गया ना, अब सुनाई दे रही है। माइक ठीक से सेट करना चाहिए। हम यह कह रहे थे कि अभिलाषिता शब्द देने का आशय है कि बहुत विषम परिस्थिति है तो मन में कामना आ जाती है, कोई भगवान से प्रार्थना ही करने लगे कि हमारे प्राण की रक्षा कीजिए, संकट से दूर कीजिए, तो उसको उत्तमा भक्ति का विरोधी नहीं माना गया। समझ रहे हैं ना, अभिलाषा की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक दो उदाहरण दिया गया है, जैसे द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था और कृष्ण को पुकारी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी की भक्ति उत्तमा नहीं है। तो अन्य अभिलाषिता शून्य, और इस श्लोक में क्या बात लिखी गई, कोई फैक्ट बतलाइए, कोई तथ्य श्लोक के। अनुशीलन चेष्टा, हाँ क्या बोल रहे, माइक लेकर के बोलो, माइक दीजिए। देखिए ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों पर कुछ थोप रहा हूं। कल एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि ऐसे संस्कृत से ही पढ़ाई होगी, संस्कृत से नहीं पढ़ाई होगी, लेकिन कुछ श्लोक हैं कि आपको संस्कृत से ही पढ़ना है, उसमें यह श्लोक भी है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि इस श्लोक के एक एक पद का अर्थ बतलाइए। कई एक जगह आएगा कि संस्कृत और हिंदी लिखिए, तो कम से कम इस श्लोक को तो संस्कृत से ही पढ़ना है। हाँ बोलो,
सीलनम से आपने बहुत अच्छे से बताया था, तो यही कह रही थी कि चेष्टा रूप है, भावुक है।
हाँ।
और उसका बहुत अच्छे से आपने बताया था, वाचिक है मानसिक है, उनमें से प्रवृत्तात्मक भी होता है, निवृत्तात्मक भी होता है।
लाओ सीलनम, सीलनम का बहुत बृहद आयाम है, रेंज बहुत अधिक है, और सीलनम ही भक्ति है, तो भक्ति का रेंज ठीक ठीक बहुत अधिक है। यह सीलनम मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, और कोई हो, इसके दो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। तो कृष्ण स्वरूप कुछ ये बात समझ में आ रही है कि प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक ये क्या होता है? प्रवृत्ति और निवृत्ति इस शब्द की कुछ धारणा है? आए निवृत्ति जिसको त्यागना चाहिए, तो एक दो उदाहरण दीजिए कि जिसको त्यागना ही भक्ति है। हाँ उदाहरण दीजिए माइक कौन? अच्छा हाँ वो कुर्सी पर दे दीजिए माइक पीछे दीजिए। नाम अभी याद नहीं है और लास्ट तक नाम याद होगा। हरे कृष्णा। अभी जो मतलब इसमें ये उदाहरण जो प्रभुपाद ने चार नियम बनाए बताए हैं, तो जो उसमें जो त्यागने वाली चीज है वो सब मांस खाना ये सब जो है ये सब जो है निवृत्त वाले हैं। हाँ और उनको दीजिए अब आए। अच्छा ठीक है। चार नियम और वाणी से ये अनुशीलन तो वाणी से भी होता है। तो वाणी से निवृत्ति का उदाहरण दीजिए वाणी से। आप लोगों में से वो जो पहले बोल चुके हैं चार नियम वे लोग एक उदाहरण भक्ति में ऐसा दीजिए कि अपने वचन से उससे बचना होता है। नहीं पहले दो लोग बोल लेंगे इसके बाद आपका नंबर आएगा।
निंदा करना वाणी से निंदा करना
वाणी से निंदा करना इससे बचना होता है। समझ रहे हैं ना? यह वाणी की निवृत्ति है कि भूल करके भी हमारे वाणी से भगवान या भगवान के भक्त की निंदा न निकल जाए। यह निवृत्ति समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी स्तर का अनुशीलन है तो उसके दो धारा है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। इसे वाणी के स्तर पर बतला रहे हैं कि विष्णु या वैष्णव के निंदा से बचना, तो निवृत्ति है ना, ये भक्ति का अंग है। इसको बाद में विस्तार किया जाएगा। तो यह चेष्टा है। ठीक। और इस श्लोक से फिर श्लोक पर जाइए, श्लोक के और किसी फैक्ट पर बोलिए, जैसे यह अनुशीलनम पर बतलाइए और किसी दूसरे शब्द पर कोई बोले। श्लोक है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसके किसी दूसरे शब्द पर। हाँ सुशील मोर।
ज्ञान कर्म आदि अनावृतम।
ठीक।
तो इसमें कह रहे हैं कि न आवृतम अनावृतम, जो ज्ञान और कर्म से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवृत का अर्थ होता है कोवर, ढका हुआ। तो ज्ञान और कर्म से जो भक्ति है ढकी होनी नहीं चाहिए। और तो ज्ञान भी दो प्रकार से हो गए। एक ज्ञान जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान, और एक ज्ञान हो गया कि मैं भगवान कहीं अंश हूँ। यह ज्ञान तो ठीक है कि मैं भगवान का अंश हूं, ऐसा ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञानी होना जरूरी नहीं है भक्ति में कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, अद्वैत भाव जो है।
तो इसमें कह रहे हैं कि कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए, ज्ञान से आवृत नहीं होना चाहिए। आवृत का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही प्रधान हो जाए और भक्ति गौर हो जाए, अनुशीलन गौर हो जाए, ज्ञान का अनुशीलन ही प्रधान हो जाए। और खास करके जो अपने भजनीय का ज्ञान है तो वह बाधक नहीं है। आप लोग गीता पढ़े होंगे तो दूसरा शतक प्रारंभ होता है तो भजनीय का ज्ञान देते हैं, तो वह भक्ति में सहायक ही है। लेकिन अब ब्रह्म के तादात्म का ज्ञान अनुशीलन करें तो बाधक है। यह इसमें आदि शब्द है, ज्ञान और कर्म तो स्पष्ट है, आदि का क्या आशय है कौन बतलाएगा? मोक्षदा, ठीक, माइक दीजिए इसको।
अरे जी, आपने योग और सांख्य बताया था।
योग और सांख्य, ठीक, और इसमें और क्या हो सकता है? आलस्य योग सांख्य त्याग आलस्य, कई एक चीज आदि है तो कई एक चीज है, तो आलस्य से नहीं ढकना चाहिए। तो कुर्सी को, अपने भक्ति को आलस्य से ढांक रहा है, अपने को कुर्सी से ढांक दिया है।
हरे कृष्ण। आप जैसे बोले ना आलस्य से नहीं ढकना चाहिए, प्रैक्टिकल उदाहरण थोड़ा बताइए। इसके अलावा ये तो क्लास है, जैसे आप दैनिक जीवन में भक्ति में, अब क्लास में तो महाराज जी नींद आता है क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं।
या क्लास भी भक्ति का ही अंग है ना,
तो ये भी इससे आलस्य समझ में क्या बोलना चाहूंगा?
तो वो आलस्य से जो आवृत है तो उत्तमा भक्ति नहीं होगी। थोड़ा बहुत आलस्य आज वो दूसरी बात है। अभी एक भक्त पूछ रहे थे कि अन्याभिलाषिता शून्यम के परिप्रेक्ष्य में ये अपने स्वास्थ्य का चिंता करना अन्य अभिलाषा में है कि अन्य अभिलाषा में नहीं है? थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है ना, नहीं तो आलस्य आवृत कर देगा। कई एक लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत उत्साह में रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव होता है कि महीना महीना भक्ति छोड़ देते हैं। आप लोग अधिकांश लोग ब्रजेंद्र कुमार को जानते हैं ना, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, हम लोगों के गुरु महाराज हिजहोलीनेस राधा गोविंद महाराज के साथ रहते थे 97 में, उनके रूम में ही रहते थे। लेकिन वे रासलीला देखने जाते थे या रात्रि को दर्शन करने के लिए, तो महाराज उनको मना करते थे कि समय से आ जाना चाहिए, तो बाहर सीढ़ी के खिड़की पर ही सो जाते थे। खूब मैंने एकदम भक्ति में निष्ठ थे, लेकिन अब तो उधर मच्छर काटे जो किए, अब बीमार हुए तो दो चार महीना अब सब प्रोग्राम ठप। तो कई एक लोग आदि में कई एक चीज लिखे हैं, आलस्य भी उसमें लिखा गया है, तो इससे आवृत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा आलस्य आ गया तब उत्तमा भक्ति नष्ट हो गई। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, और कोई दूसरा शब्द अभी फिर इस पर आएंगे, और दूसरे अंश पर कोई बोले आए? कृष्ण अनुशीलन, तो बोलिए, पूछना नहीं है, बोलना है।
आप महाराज जी कृष्ण शब्द पे बताए थे कि कृष्ण मतलब कृष्ण के जितने भी अवतार हैं वो सब उसमें हाँ, सम्मिलित होते हैं
हाँ,
तभी कृष्ण अनु उसके साथ भी लग गया था।
हाँ, अब कृष्ण के अवतार यहाँ तक कि वो अनु का लाइट लेकर के
हाँ,
भगवान के भक्त भगवान के धाम ये सब भी उसी में आ जाएंगे। कुछ अनुशीलनम तो अनु कुछ उधर भी लाइट दे रहा है ना। ठीक ठीक ठीक। और कोई अभी कुछ शब्द बाकी रह गए ना? अनुकूल लेना ठीक। कौन किसी को हाँ दीजिए पीछे।
भक्ति में जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसे भक्तों का संग करना
है वो ठीक है, वो सब करना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में जो बात कही जा रही है श्लोक के शब्द को हम पूछ रहे हैं, भक्ति के या शरणागति के पर हम नहीं पूछ रहे हैं। ये श्लोक है ना कि श्लोक के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल लेना इसका क्या आशय है, इस पर कुछ बोलिए। हाँ रघुपति को दे दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज। अनुकूल लेने मतलब भक्ति के अनुकूल बातों को हम ग्रहण करें, भक्ति के प्रतिकूल बातों का हम तिरस्कार करें।
हम लोग जब एमए के स्टूडेंट थे तो बात चलने लगी कि मार्क्स कैसे अच्छा आएगा। हम लोग के एक प्रोफेसर थे, वे कह रहे थे कि देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और मार लिखे जा रहे हैं तो उससे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको जूता की जरूरत है और चले गए कपड़ा को, कपड़ा मार गिराता जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन हम खूब अच्छा से आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है इस। हाँ ठीक है, आगे माइक बढ़ाइए। मोक्षदा
कृष्ण के अनुकूल या कृष्ण के धाम परिकर के अनुकूल शीलन करना ही उत्तम भक्ति है।
अनुकूल का क्या आशय है? अनुकूल मैंने
जैसा कृष्ण के या तो अनुसरण मतलब कृष्ण ने जो कहा है उसको अनुसरण करना या कृष्ण के भक्त जो कह रहे हैं उनका अनुसरण करना।
कौन हाँ आगे दे दो माइक आगे अपने आगे। अनुकूल का क्या अर्थ है?
भगवान के दिव्य आनंद के अनुकूल।
हाँ भगवान के दिव्य आनंद के अनुकूल ठीक। उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, जीव गोस्वामी का शब्द है। अनुकूल लेने का अर्थ हुआ जो कृष्ण को पसंद पड़े। समझ में आ रहा है? रुकिए रुकिए अभी। जो कृष्ण को पसंद पड़े तो वैसी चेष्टा करना यह भक्ति है। समझ में आ रहा है अनुकूल लेने का अर्थ? जो कृष्ण को पसंद पड़े, जो जिससे कृष्ण को आनंद अनुभव हो तो उसको कहा जाएगा अनुकूल लेना ठीक है। लेकिन इसी को माइक दीजिए जो दिव्य आनंद दे रही है। माइक तुम्हारे पास है ना? युद्ध भूमि में अच्छा वो तो पहले बाद में। माँ जसोदा कृष्ण को दूध पिला रहे थे, दामोदर बंधन की लीला जानती हो ना। और जब मटके के दूध में उफान आ गया तो कृष्ण को वो गोद से हटा दी और बहुत जल्दी से हटाई, दौड़ करके दूध बचाने के लिए चली गई। तो इस क्रिया से कृष्ण को दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई कि नहीं?
नहीं
नहीं। तो ये भक्ति है कि नहीं? देखिए यह बिल्कुल तथ्य है कि अनुकूलने का अर्थ है कि जिससे कृष्ण को आनंद हो, जो उनको पसंद पड़े। लेकिन अब ये अर्थ किया जाए, जीव गोस्वामी अर्थ किए हैं, तो इसमें अति व्याप्ति और अनाव्याप्ति का दोष है। अति व्याप्ति कहते हैं कि जिस चीज को हम कहना चाहते हैं अब ऐसे कह दे कि उसमें दूसरा चीज भी आ जाए, और अनाव्याप्ति का अर्थ है कि जितना चीज को कहना चाहते हैं ऐसे कहे कि कोई चीज छूट जाए। तो यदि यह अनुकूलन का अर्थ लिया जाए कि कृष्ण को जो पसंद है, जैसे पसंद है, तो इसमें दो दोष आ रहा है, अनाव्याप्ति का दोष और अतिव्याप्ति का। तो एक तो माँ यशोदा अपने गोद से कृष्ण को उतारी तो पसंद पड़ने की बात तो दूर है, बहुत क्रोध उनको आया, संजात कोप, कुपित हो गए, इतना कुपित हो गए कि अरुण उनका आंख लाल हो गया और अधर मैंने ओठ फड़कने लगा। तब तो यशोदा भक्त की गिनती में नहीं है ना, गोद से उतारी ना तो कृष्ण के संजात कोप, उनको क्रोध आ गया, स्फुरता रुणे क्षण ऐसे अधरुष्ट वो ओठ फड़कने लगा। अच्छा दूसरी चीज है कि जब कृष्ण युद्ध भूमि में है, वीर रस के आवेश में है, तो कोई बाण मार रहा है, युद्ध भूमि में किसी योद्धा पर कोई बाण मार रहा है, तीर लग रहा है, तो उससे उसको कष्ट नहीं होता है बल्कि एक उत्साह बढ़ जाता है, आनंद का ही अनुभव करता है। जैसा आवेश है उसके अनुसार वो आनंद बढ़ जाता है। क्षमा कीजिएगा, भद्दा उदाहरण है, जब व्यक्ति कंदर्प के उद्रेक में है, कंदर्प कुछ लोग समझेंगे ही नहीं, कल एक व्यक्ति पूछे कि गौड़ का क्या अर्थ होता है, कंदर्प मतलब जो काम भावना में है, उसके काम से ग्रसित है, और उस समय उसकी प्रिया नख से आघात करे, नख धसा दे, तो उससे उसको कष्ट नहीं होता है बल्कि उसका स्मरण करके व्यक्ति प्रसन्न होता है। ऐसे कहीं रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ा सा कोई टच कर जाए तो कितना गुस्सा में हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई स्थिति है कोई पीन भी चुभा दे तो उसको बुरा नहीं मानते। और उसी प्रकार जो युद्ध के आवेश में है तो कोई बाण मारता है तो चुभता है, लेकिन और युद्ध का ही उत्साह बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसको उदाहरण दिया गया है, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साधु, विदुर जी उपदेश दिए धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और निशीत अर्ध रात्रि में घर से निकल गए। तो पति प्रयांतम, जब घर से पति निकल रहे हैं तो पति प्रत्यय चानु जगाम साध्वी, अब गंधारी भी पीछे पीछे चल दी, एक प्रश्न होगा गंधारी सुकुमारी है वे क्यों जा रही हिमालयम, हिमालय में तो बहुत कष्ट है, ठंडा का कष्ट है और कष्ट है। तो कह रहे हैं कि न्यस्त दंडम प्रहर्षम, वो जो कष्ट है जो संन्यास ले रहे हैं तो उनके लिए वही हर्ष का विषय हो जाता है। उससे प्रसन्न होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, मनस्वी नामी सत्सम प्रहार, जैसे कोई योद्धा है और उस पर कोई बाण मारता है तो उसे और उत्साह उसका बढ़ जाता है। तो कृष्ण भी जब युद्ध भूमि में है तो उन पर भी लोग बाण मानते हैं, उनको भी तो पसंद पड़ता है, तब तो कृष्ण के दिव्य आनंद के लिए बाण मार रहे हैं तो भक्ति हुई ना, वह क्रिया भक्ति है। मैं प्रश्न कर रहा हूं तुमसे कि कोई कृष्ण पर बाण मार रहा है कि उनको खत्म कर दे, कृष्ण युद्ध के आवेश में है तो उनको अच्छा ही लग रहा है, दिव्य आनंद आ रहा है, दिव्य आनंद आ रहा है ना, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो भक्ति उसको माना जाएगा?
अगर भगवान को आनंद आ रहा है तो फिर
वो भक्ति नहीं है, उसको भक्ति मान लिया जाए तब तो असुर लोग सबसे बड़े भक्त हो जाएंगे। तो इसी से अनुकूलन का अर्थ है कि कोई भी चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण के प्रति तो भाव प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। गोद से यशोदा उतार रही है, कृष्ण कोई पसंद नहीं है, लेकिन यशोदा का भाव प्रतिकूल नहीं है, वो तो क्यों कृष्ण को उतार रही है कि अस्तन का दूध तो हमारे शरीर में ही है ना, थोड़े देर के बाद भी पिला दूंगी, वो मटका का दूध है तो नष्ट हो जाएगा, तो भाव अनुकूल है तो यह भक्ति है, और भाव प्रतिकूल है और भले बाण मारने से कृष्ण को आनंद अनुभव हो रहा है फिर भी यह भक्ति नहीं है, यही आप कहना चाहते थे ना। तो अनुकूलन का इतना अर्थ है कि भाव प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। और इस श्लोक के किसी शब्द के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, थोड़े देर के बाद पूछ सकते हैं, या कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इस श्लोक में से आपके पास भी श्लोक है, इसमें गिनती कीजिए कितना शब्द है टोटल, गिन करके बतलाइए। उसके पास नहीं है, इंदु लेखा के पास दे दो, हाँ इधर बहुत है। तेरह, सब लोग सहमत हैं, हाथ उठाइए, कितने लोग सहमत हैं, एक उनको भी शायद नहीं, उनको भी दीजिए, कितने लोग सहमत हैं कि इस श्लोक में 13 शब्द है, हाथ उठाइए। अभी गिने ही नहीं तो सहमति और असहमति नहीं प्रकट कर रहे हैं। 13 शब्द है, और आप लोग कितने हैं, आप लोग संख्या में कितने हैं, तो एक व्यक्ति को ने एक शब्द कितने व्यक्ति को लेने पड़ेगे, 13 शब्द को बांटा जाए आप लोगों में तो एक शब्द पर ही कितने लोगों को संतोष करना पड़ेगा, कितने लोग हैं गिनो, पवन खड़ा होकर के गिनो, ढाई लोग आए, 26 और 7 33। अच्छा ठीक है, तो आप लोग अपने पसंद से इस श्लोक के एक एक शब्द को ग्रहण कर लीजिए, अपने पास लाइए, एक शब्द एक व्यक्ति को लेना है तो 3 व्यक्ति एक शब्द को ले सकते हैं। अन्य शुभ कृष्ण तो शुरू का ही ले रहे हैं। अन्य ठीक, और दूसरा कौन लेगा, आप अभिलाषिता, ठीक, ये चश्मा अन्य अभिलाषिता शून्य। ठीक, आप ऐसे मान लीजिए कि एक एक शब्द चुन लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शब्द को श्लोक से हटा करके और कहीं अपने पॉकेट में या कहीं दूसरे जगह रख लीजिए और विचार कीजिए कि श्लोक के अर्थ पर क्या प्रभाव आ रहा है। मान लीजिए कि अन्य शब्द को श्लोक से हटा दीजिए तो श्लोक का क्या अर्थ होगा? अभिलाषिता से शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन उत्तमा भक्ति है। तो इसमें कुछ दोष आ रहा है एक शब्द हटाने से? तो क्या दोष आ रहा है? हाँ बोलो। प्राण है तो एक तरह से तो भक्ति का प्राण ही खत्म हो रहा है। रोज अभिलाषा ही करते हैं ना, मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दिहवास। जब तक अभिलाषा नहीं है तो क्या कोई भक्ति करेगा? समझ रहे ना, एक शब्द हटाने से अब भक्ति का स्वरूप नष्ट हो रहा है। अन्य अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, अभिलाषिता तो होनी ही चाहिए, रोज रोज अभिलाषा होना चाहिए। अच्छा, अब आपका कौन शब्द है? अभिलाषिता। तो इसको हटा देने से क्या असर पड़ेगा? तब क्या इसका व्यवहारिक जीवन पर असर आएगा? आए एक एक व्यक्ति कोई बोलिए। हाँ, तो मैंने इसका भक्ति पर कैसा असर आएगा? नहीं, अब अभिलाषिता को तो हटाए तो अर्थ क्या देगा श्लोक? अन्य शून्यम मतलब मैंने क्या? सब कुछ मतलब मैंने खाना पीना पेशाब करना शौच जाना अन्य शून्यम का यही अर्थ हुआ ना। तो मैंने ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा कोई अभ्यास कर सकता है भक्ति का कि शौच पेशाब को शून्य कर दे? तो देख रहे हैं एक शब्द को हटाने से बहुत भारी अंतर आ रहा है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि पूरे ग्रंथ की व्याख्या इसी श्लोक की है, इसी श्लोक की व्याख्या पूरा ग्रंथ है। और पीछे के लोग कौन शब्द लिए हैं बोलिए, एक शब्द हटाइए अपना। आनुकूल्य न, ठीक, तो आनुकूल्य न हटा देंगे तो कंस का चिंतन भी भक्ति हो जाएगा। असुर सब फर्स्ट क्लास भक्त हो सकते हैं। ठीक, और कोई शब्द हटा करके? कृष्ण हटा दीजिए तब क्या असर आएगा? ध्रुव बतलाओ, कृष्ण को हटा दिया जाए तो भक्ति के कैसा स्वरूप आ रहा है? हाँ, या अब तो कृष्ण को हटा दिया जाए तो गैरेज में जो गाड़ी धो रहा है पोछा मार रहा है वो भी भक्ति हो जाएगी अनुशीलन, लेकिन वो तो खैर अन्य अभिलाषिता से शून्य नहीं है। तो मैंने कई एक चीज भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। और कई एक लोग हैं कि बहुत बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, क्या क्या, उनको कोई अभिलाषा नहीं है, तो वे सब भी भक्ति के अंतर्गत उत्तमा भक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कृष्ण के लिए अभ्यास करते हैं, चेष्टा करते हैं, वही भक्ति है। और कोई दूसरा आप लोग बोलिए कुछ, एक शब्द हटा करके देखिए, केवल अपना एक शब्द हटाइए, दूसरे लोग उस पर विचार करेंगे ना। आए भक्ति हटा दी, ठीक ठीक, तो पढ़िए श्लोक भक्ति हटा करके, अन्य विलासिता शून्य सब बोलिए, क्या असर आ रहा है भक्ति हटा देने से, क्या असर पड़ रहा है? हम परिभाषा किसकी दे रहे हैं यह पता नहीं चलेगा, जबकि प्रतिज्ञा वाक्य है कि भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए भक्ति का लक्षण कर रहे हैं। तो किस चीज के विषय में कहा जा रहा है इसका पता ही नहीं चलेगा। फिर से श्लोक बोलिए, तो कुछ इस श्लोक के समझदारी बन रही है, कुछ कंसेप्ट आ रहा है मन में, कृष्ण स्वरूप कुछ समझ में आ रहा है? आए संस्कृत के इसमें क्या जरूरत है, संस्कृत में भाषण हो रहा है। अच्छा, किसी को कुछ कठिनाई इस श्लोक को समझने में आ रही है? इस श्लोक को समझने में क्या कठिनाई आ रही है, अपनी कठिनाई को बतलाइए। हाँ बोलिए दयालु। हाँ हाँ, एक 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 स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई कृष्ण का अनुशीलन बहुत अच्छा चीज है, उत्तमा, लेकिन क्या उत्तमा है इसमें भक्ति का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना उत्तम चीज है, ठीक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन भक्ति का कंसेप्ट इसमें नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ
जैसे महाराज मैं यही कह रहा था कि शुरू में अन्य अभिलाषिता शून्यम भी हो गया कि कोई अभिलाषा हाँ, ना हो, प्रवृत्ति ना हो, और ऐसे ज्ञान कर्म भी उससे अनावृत ना हो, अनुकूलन भी हो गया, तो कृष्ण का अनुशीलन तो कर ही रहे हैं।
हाँ,
एक भक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन वो उत्तम तो है ही ये सब चीजों में। हाँ, जैसे आपने बताया दोष हाँ, नहीं है कोई,
हम मान रहे हैं बहुत उत्तम है, लेकिन वो पूजा है कि मन की संतुष्टि है कि सेवा है, ये नहीं पता चल रहा है ना, वो उत्तम चीज क्या है। भक्ति को हटा देंगे तो इतना तो जरूर है कि उत्तम चीज है, लेकिन वो है क्या, क्या उसको कहेंगे, यह नहीं पता चल रहा है ना। और भक्ति शब्द है तो इतना है ना कि इसको भक्ति कहा जाएगा, यही भक्ति की परिभाषा है। भक्ति को हटा दिया जाए तो कार्य तो भाई बहुत उत्तम है, सब स्वीकार कर रहा है अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन उत्तम है, लेकिन वो क्या चीज है, उसकी संज्ञा क्या दी जाएगी, यह नहीं समझ में आ रहा है ना। आए आदि में चला जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा। हाँ
महाराज, ये साध्य भक्ति का लक्षण हो रहा है या फिर ऐसे अनर्थ निवृत्ति में भी तो हृदय दूषित रहता है, तो हम अन्याभिलाषिता शून्यम कैसे होंगे?
क्या
जब कोई व्यक्ति साधक अनर्थ निवृत्ति से भक्ति कर रहा है तो हृदय में तो काम क्रोध इत्यादि है, तो अन्याभिलाषिता कैसे होगा, मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम कैसे होगा, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है।
हाँ ठीक है, आप ध्यान नहीं दिए, ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, एकदम स्पष्ट शब्द में कहा गया, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना भक्ति है। लेकिन भक्ति के उत्तमा बनने के लिए आवश्यक दो अंश है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। जब तक यह स्तर नहीं आएगा तब तक उत्तमा भक्ति नहीं, भक्ति है उत्तमा भक्ति नहीं है।
श्रद्धा किस स्तर पे होगा कि अनर्थ साधु संघ की अनर्थ निवृत्ति या?
अब देखिए यहाँ तो ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है और दूसरे ग्रंथ से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो आप अभी धैर्य रखिए, कंपैरिजन करना होगा तो बाद में कीजिएगा, अभी तो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ ना, अभी मंगलाचरण हुआ और तब तक आप दूसरे ग्रंथ से कंपैरिजन करने लगे, अभी तो परिभाषा स्थापित की जा रही है। और अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन भक्ति, लेकिन उत्तमा भक्ति के लिए आवश्यक है कि प्लस अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। चेयरपर्सन कुछ समझ में आ रहा है? हैं हैं कुछ नहीं समझ रहे? हाँ नहीं आ रहा है। ठीक 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 हाँ
उत्तमा वर्ड को हटाते हैं।
हाँ तो उत्तमा वक्त को हटाएंगे तो राजसी भक्ति है, तामसी भक्ति है, निर्गुणा भक्ति है, ये कुछ पता नहीं चलेगा कि किस स्तर का भक्ति है, इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इतना तो पता चल रहा है कि भक्ति है।
कौन से स्तर की है ये नहीं
पता, भक्ति तो कई एक स्तर के है ना, किसी के जान मारने के लिए भी भक्ति की जाती है। तो उत्तमा को हटा देंगे तो प्राकृत भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, ये पता नहीं चलेगा।
ठीक है महाराज।
किसी को कुछ पूछना है? और
अनु और शीलनम को अलग अलग शब्द लिया है।
हाँ।
तो अनु तो प्रत्यय है, शब्द मतलब उपसर्ग है ना, अनु तो अलग शब्द,
अनु उपसर्ग है,
तो उसको अलग लेना है इकट्ठा लेना है? अगर उसको लेंगे तो 12 ही बनेंगे, और एक अनु शीलन इकट्ठा लेंगे तो कैसे लेना चाहिए?
ठीक, तो उपसर्ग का
परिभाषा क्या है, उपसर्ग किसको कहते हैं। वो भी एक शब्द ही है ना। उपसर्ग की क्या परिभाषा है हिंदी में, संस्कृत में नहीं, कौन बतलाएगा? हिंदी के अनुसार या संस्कृत के अनुसार ही उपसर्ग की क्या परिभाषा है? किसी शब्द के पहले कोई शब्द या शब्दांश जोड़ दिया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, यही परिभाषा है ना। किसी शब्द के पहले कोई शब्द या शब्दांश और किसी को इस श्लोक के विषय में कुछ पूछना हो तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तो पूछूंगा ही। और हम मान लीजिए कि छोड़ भी दे तो ये बीआईची तो पूछेगा ही, वो नहीं छोड़ने वाला है। हाँ
है?
अच्छा अच्छा, वो अपनाने के विषय में अभी तीन चार दिन धैर्य रखिए, इसके बाद खूब अच्छा से सबसे अधिक समय इसी पर दिया जाएगा कि कैसे अपनाएं इसको। अभी जैसे इतना दिन बिता लिए, चार पांच दिन और धैर्य। ये जब साधन भक्ति आएगा तो खूब विस्तार से इसको बतलाया जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, इसका अनु का अर्थ बतलाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि कॉल क्या अर्थ बतलाया गया, आप बतलाइए। कॉल इसका अर्थ बतलाया गया, तो उसमें से आप कुछ बतलाइए। कोई दूसरा बतलाए, कुछ अनु का अर्थ बतलाया गया था है? हाँ, अनुगमन। अनु का कई एक अर्थ होता है, तो जैसे अनुसरण कहते हैं ना, शरण मतलब सरकना और पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे। से अनुज का क्या अर्थ होता है? अनुज, अनुज शब्द सुनते हैं ना, ज मतलब जन्म लेना, जो पीछे जन्म लिया उसको अनुज कहते हैं और जो आगे जन्म ले लिया उसको अग्रज कहते हैं और बहुत पहले जन्म ले लिया तो उसको पूर्वज कहते हैं। अब अनु का शब्द आ रहा है अनुज, तो अनु पीछे के अर्थ में आता है। तो एक अर्थ है, यदि इसको उपसर्ग के रूप में ले रहे हैं तो अनु का अर्थ बतलाया गया कि आचार्यों के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए शीलन करना, ये अनुशीलनम। भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं आचार्यों के पीछे, जैसे वे किए हैं वैसे कर रहे हैं, तो इस अर्थ को अनु दे रहा है। और थोड़ा सा प्रकाश कृष्ण के तरफ भी दे रहा है, ये कृष्ण और कृष्ण के पीछे जो है उनके परिकर, ये उनके प्रतिनिधि। तो अनु पीछे के अर्थ में आता है। अनुज से इसको समझिए क्या अर्थ दे रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग फिर पीछे की बात ध्यान रखिए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए, मुख्य चीज क्या है, भक्ति के वैशिष्ट को कहना। तो उसके पहले हम भक्ति के लक्षण को कह रहे, भक्ति के परिभाषा को कह रहे, और सताम मतम, अपने मन से नहीं भक्तों के मत से। तो भक्तों का मत नीचे के श्लोक में उद्धृत कर रहा है, बोलिए इसको। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ये उच्चारण का भी महत्व है। आप लोग को तो पता होगा, एक व्यक्ति श्लोक सुनते हैं ना, कैसा उच्चारण कर रहे हैं उसी पर मार्किंग होता है। अरुण चरण जी ये सब श्लोक भी पूछेंगे आप लोगों से। 10 नंबर उच्चारण पर होता है, और वो कॉपी जांचने वाला नहीं वो करते, वो अलग से नंबर पहले आ जाता है। तो 4 श्लोक इसमें से याद करना है, उसी में से कुछ पूछा जाएगा, तो 2 यही है। तो श्लोक ठीक से उच्चारण करना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अर्थ बतलाइए कोई, वृंदावन बिहारी अर्थ बतलाइए। माइक माइक लेकर के माइक।
सभी पापों से मुक्त होकर और भगवान श्री कृष्ण की अपनी इंद्रियों की सेवा करना भक्ति है।
फिर से बोले।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम यानी सभी उपाधियों से मुक्त होकर तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम मतलब निर्मल होकर, अब तत्परत्वेन का पता नहीं है जी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, भगवान जो ऋषिकेश हैं श्री कृष्ण, उनकी सेवा अपनी इंद्रियों के द्वारा जब हम करते हैं तो भक्ति कहलाती है।
ठीक, और कौन इसी को बोलेगा? हाँ, माइक दे दीजिए पीछे सुशील को।
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, वह सर्व सभी उपाधियों से निर्मुक्त विशेषेण मुक्त, यहाँ पर भी उपसर्ग है तो विशेष प्रकार के मुक्त होना चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम, वह तत्पर होकर, वह तत्पर होने से वह निर्मल हो जाता है। हृषिकेण, ऋषि का नाम ईश, हृषिकेश, तो हृषिकेश जो भगवान हैं उनके हृषिकेण अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, हृषिकेण ऋषि मतलब इंद्रियों के द्वारा, हृषिकेश ऋषि का नाम ईश भगवान श्री कृष्ण के सेवनम, जब वह सेवा करता है उसी को भक्ति ही उच्यते, भक्ति कहा जाता है।
इसमें भक्ति की परिभाषा दी जा रही है, भक्ति उच्यते, भक्ति कहा जाता है। किस चीज को भक्ति कहा जाता है? संस्कृत के शब्द से बतलाइए। सेवनम, सेवनम को भक्ति कहा जाता है। इस सेवनम का क्या अर्थ है? हाँ, भगवान की सेवा करते हैं तो उसको सेवनम कहते हैं। ठीक, और भगवान को ग्रहण करेंगे इंद्रियों से उसको सेवनम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि चलिए छत पर धूप सेवन करते हैं, धूप सेवन करते हैं, ऐसा शब्द आप लोग सुनते हैं ना, औषधि सेवन कर रहे हैं, ये भी शब्द सुनते हैं ना। तो सेवा के अर्थ में भी सेवन होता है और ग्रहण के अर्थ में भी, तो दोनों अर्थ यहां लिया जाएगा। तो सेवनम भक्ति रुच्यते, किसकी सेवनम? हृषिकेश। हृषिकेश का क्या अर्थ है पवन बतलाओ? जो इंद्रियों के स्वामी है, तो कैसे उनकी सेवा करने को भक्ति कहते हैं? इंद्रियों द्वारा। अब ये सब बात आएगी, शिष्य द्वारा सेवा करने से या धन द्वारा सेवा करने से वह कम से कम साधन भक्ति नहीं होते, इसके बाद में चर्चा। इंद्रियों द्वारा सेवन करना, अच्छा, उस सेवन का कई एक विशेषण दिया गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ है कि सेवा में कोई उपाधि नहीं होना चाहिए, मतलब अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ है कि अन्य अभिलाषा से मुक्त हो करके, और तत्परत्वे न, कौन कहा वृंदावन बिहारी के तत्परत्व नहीं, तत्व, तत् मतलब कृष्ण हृषिकेश, तो उसी के मैंने सेंटर में रह करके तत्परत्वे न, उसके आश्रित हो करके, उसको मुख्य चीज मान करके, तो इसका अर्थ है आनुकूल्य। और सेवनम अनुशीलनम, और निर्मलम का अर्थ है ज्ञान कर्म आदि से अनावृत। तो सब प्रकार के उपाधि से नहीं, सब प्रकार के अभिलाषा से शून्य होकर के, कृष्ण के ही तत्पर होकर के, मतलब अनुकूल भाव से ज्ञान कर्म को अलग करके जो उनका सेवन करते हैं, तो इसी को भक्ति कहते हैं। तो रूप गोस्वामी जो भक्ति दिए की परिभाषा दिए, तो उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। ये नारद पांचरात्र का श्लोक है। और उत्तमा भक्ति के लिए आवश्यक है कि उसमें अन्य वांछा न हो, जब तक अन्य वांछा है तो उसको उत्तमा भक्ति नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। वो क्या श्लोक है बोलिए? है तो क्यों अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है सालोक्य श्राष्ट साम्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जन स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृत। ये काट करके अपने काम का चीज लिए हैं। अहेतु की अव्यवहिता, अहेतु की मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है, मतलब जो जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, और अव्यवहिता जो प्रतिहत नहीं हो रही है। तो यह भक्ति पुरुषोत्तम है, जो भगवान में भक्ति है, तो उसका लक्षण दे रहे हैं कि मांगने की बात तो दूर है, इच्छा होने की बात दूर है, वो पांच प्रकार के मुक्ति दिए जाने पर भी नहीं लेता है। एक शर्त करके बिना मत सेवनम जाना, यदि सेवा को माइनस कर दिया जाए और पांच प्रकार के मुक्ति दिया जाए तो उसको भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, हमारे पास ही तुम रहो, सामीप्य का यही अर्थ हुआ ना, नजदीक रहना, लेकिन कुछ सेवा नहीं करना है, यह पसंद नहीं है। भले ही दूर रहेंगे, सेवा उनको चाहिए। तो भक्ति का मुख्य अंश है सेवा। तो स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहृत, इसी को आत्यंतिक अब्सोल्यूट भक्ति कहते हैं, और सब तो सोपाधि भक्ति है। तो भक्ति का लक्षण दिया है निर्गुणा भक्ति का, ये निर्गुणा और उत्तमा, इसमें कुछ रिलेशन आप लोगों को दिख रहा है। कभी कभी गुण को ही तम कहा जाता है, तो उत्तमा जो तमोगुण से ऊपर है, गुणों से ऊपर है, और निर्गुणा जो गुणों से ऊपर है, तो निर्गुणा भक्ति और उत्तमा भक्ति एक अर्थ में है। तो कपिल देव निर्गुणा भक्ति की परिभाषा दिए हैं कि मदगुत मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो बुधौ। और भगवान के गुण को सुना और उसका मन वैसे ही बहने लगे, भगवान के तरफ जाने लगे, जैसे गंगा जी समुद्र के तरफ जा रही हैं। तो इसको निर्गुणा भक्ति कहा गया। उसके पीछे कुछ कारण नहीं है, बस भक्ति कर रहे। उसके पहले तीन भक्ति का वर्णन किया है, ये कोई दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, हिंसा के लिए भक्ति कर रहा है तो तमोगुणी भक्ति है, अपने जस के लिए भक्ति कर रहा है तो वो रजोगुणी भक्ति है, और जरा मरण से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहा है तो सत्वगुणी भक्ति है। और समझना चाहिए कि भक्ति रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी नहीं होती है। भक्ति तो भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो वो तो सदैव निर्गुणा ही है, लेकिन ये तामसी राजसी जो भेद करते हैं वो अधिष्ठान के आधार पर। हमारा मन तमोगुण में और हम भक्ति कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा तामसी भक्ति। हम रजोगुण के चपेट में हैं और भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति को, हमारे भक्ति को कहा जाएगा राजसी भक्ति। हम सत्वगुण में हैं और भक्ति कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सात्विक भक्ति। कभी कभी अधिष्ठान से भेद दिखता है, पानी तो एक है लेकिन लाल गिलास में डाल दीजिए तो लाल दिखेगा, नीला गिलास में डाल दीजिए तो पानी नीला दिखेगा। वो पानी एक है, वो अंतर क्यों दिख रहा है, वो बर्तन के चलते। तो उसी तरह ही जो तामसी राजसी सात्विक भक्ति का विभाग किया गया है, तो ये कर्ता के चित्त को देख करके। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सब प्रकार के उपाधि से मुक्त अनुकूल भाव से कृष्ण को ही सेंटर में रह करके और किसी दूसरे चीज का मिश्रण किए बिना, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना भक्ति है। यह नारद पंचरात्र का उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। रूप गोस्वामी अपने भक्ति की परिभाषा के समर्थन में और श्रीमद् भागवतम से कपिल देव के उक्ति को प्रस्तुत किए, तो जो परिभाषा दिए हैं उसी के समर्थन में ये श्लोक लिखे। तो कह रहे हैं कि भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए भक्ति की पहले परिभाषा कर रहे हैं। तो परिभाषा तो हो गई, और वैशिष्ट्य क्या है भक्ति का? कोई बोलिए, भक्ति के क्या करैक्टरिस्टिक हैं, विशेषता है उत्तमा भक्ति के?
भक्ति
आए मान शून्यता हाँ ये तो लक्षण है। विशेषता का अर्थ है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। आए क्लेशाग्नि एक तो क्लेशाग्नि है और कोई विशेषता आए श्री कृष्णाकर्षण ठीक सुभदा मोक्षदा नहीं है मोक्ष लघुदा कृत है। आए मुक्ति की कामना नहीं रहती ठीक और सांद्रानंद विशेष आत्मा ठीक। तब इसको आए आए क्या बढ़ता है लौल्य। ठीक है आगे का कौन पेज है। नहीं नहीं अश्लोक अश्लोक निकालो अश्लोक श्लोक आ गया। तो फिर से आप लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा इसमें कितने पद हैं इस श्लोक में, कितने पद हैं गिन करके बतलाइए। पद मतलब टर्म, शब्द और पद में अंतर होता है। अच्छा ठीक, कौन कौन इसके सपोर्ट में है, कौन विरोध में है? सात, ठीक। वो छह तो ठीक है और सा यह पद नहीं है, श्लोक में सा भी है ना, तो दो शब्द को हटा दीजिए। सा मतलब भक्ति, भक्ति स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए सा कह रहे हैं। सा मतलब वह, मतलब कौन, भक्ति, उत्तमा भक्ति कैसी है, क्लेश अग्नि, सब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है, क्लेश का नाश करने वाली, शुभदा, शुभ देने वाली, मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को लघु करने वाली, सुदुर्लभा, प्राप्त होने में अति दुर्लभ, जिसकी प्राप्ति में कठिनाई हो, सांद्रानंद विशेष आत्मा, गाढ़ आनंद स्वरूपा और श्री कृष्णाकर्षण, श्री कृष्ण को खींचने वाली। तो भक्ति के छह विशेषण को दिया जा रहा है, उसके छह गुण को, ये छह विशेषता को इस श्लोक में दिया गया। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, श्लोक बुलवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के परीक्षा में आएगा संस्कृत शब्द को लिखिए, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। मैं एक बार गया था, मायापुर में था, कल आए थे, वहां के डायरेक्टर बैठे थे, पद्मनयन थे, इनके ऑफिस में बैठा था, तो उसी दिन नेक्टर ऑफ डिवोशन का परीक्षा था। एक नेपाल के भक्त उसमें काम करते थे ऑफिस में, उनकी पत्नी थी, उसको परीक्षा देना था, क्लेश अग्नि सुविधा, वो एक डेढ़ घंटा वही रट रही थी। तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो छह शब्द को आप लोग याद कर जाइए, क्या क्या छह शब्द है, हमको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, एक एक करके बोलिए। क्लेश अग्नि, ठीक, शुभदा, ठीक, मोक्ष लघुता कृता नहीं, वो ये त में त लिखा नहीं गया है, कुछ काटा गया है ना, तो अपमान करेंगे ना। जैसे लिखा गया वैसे बोलिए, त के नीचे कुछ काट दिए हैं ना, तो आधा कर दिए, मोक्ष लघुता कृत, वो आधा कैसे होगा, लिखा है पूरा, कैसे आधा बोलेंगे। तो आधा बोलने का टेक्निक है कि उसके पहले वाले पर ज्यादा टाइम दे दीजिए, तब आधा निकलेगा, नहीं तो आधा निकलेगा नहीं, क्री पर थोड़ा रुक जाएंगे तब यह आधा निकलेगा, नहीं तो क्री पर नहीं रुकेंगे तो पूरा तो आएगा जिह्वा पर। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत, आए क्या, जब तक उसको दीर्घ नहीं करेंगे तब तक वो आधा उच्चारण करना कठिन होगा। अब इसमें ये छह शब्द है, और समझिए कि लगभग अब यही आप लोगों का आधा कोर्स है, या कम से कम एक चैप्टर तो यही है, तो 6 शब्द तो 6 मिनट में समझ जाएंगे। और इसका कौन बतलाएगा? क्लेश साधनी इसमें कितना शब्द है? 2 है। क्लेश क्लेश क्लेशान हंति इति क्लेश, उसी को स्त्रीलिंग में क्लेशाग्नि, ये भक्ति का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग में सब शब्द है। क्लेशाग्नि, क्लेश समझते हैं कष्ट, जो क्लेश का हनन करने वाली है, क्लेश को नष्ट करने वाली है, तो उसको कहा जाएगा क्लेशाग्नि, और जो शुभ प्रदान करने वाली है उसको कहा जाएगा शुभदा, और मोक्ष को जो छोटा बनाते और उसको कहा जाएगा मोक्ष लघुता कृत। लेकिन जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है उसको कहा जाएगा सुदुर्लभ। सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये ऐसा तो शब्द है कि इसकी व्याख्या करने बहुत कठिन है, एक गाढ़ आनंद स्वरूप है। और श्री कृष्णाकर्षण, यह श्री कृष्ण को खींचने वाली। ये 6 शब्द का अर्थ सबको समझ में आ रहा है ना मोटा मोटी? बाबा कोई कठिनाई नहीं लग रही है ना? ये 6 शब्द के अर्थ में किसी को कठिनाई लग रही है तो पूछिए। सांद्र मतलब गाढ़ होता है, हम लोग तो हिंदी में पढ़े हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल ऐसे पढ़ते थे। सांद्र मतलब गाढ़, कंडेंस्ड। तो पहले इसी पर विचार किया जाए, तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र आनंद, आत्मा मतलब स्वरूप। भक्ति कैसा है? तो गाढ़ आनंद स्वरूप, लेकिन इसमें विशेष कैसे डाल दिए? गाढ़ आनंद है लेकिन कैसा स्वरूप है हम बतला नहीं सकते, कुछ शब्द नहीं है, अब यही विशेष, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी, लेकिन अभी मोटा मोटी अर्थ कि गाढ़ आनंद स्वरूपा है, इसका स्वरूप ही गाढ़ आनंद है। और हाँ, तो किताब तो अंग्रेजी से हिंदी किया गया है ना, ठीक ही है। और क्या अब पीछे चलिए, इस ग्रंथ का क्या नाम दिया गया? भक्ति रसामृत सिंधु। तो सिंधु है तो इसका बंटवारा किया गया 4 भाग में। पहला भाग कौन है? पूर्व विभाग। इसमें कितनी लहरियां हैं? 4। तो 4 लहरी में क्या क्या चीज है? प्रथम लहरी में क्या है? सामान्य भक्ति। दूसरी लहरी में साधना भक्ति। तीसरी लहरी में भाव भक्ति। और चतुर्थ लहरी में तो भक्ति के कितने भेद किए गए? 3। कौन कौन? प्रेम भक्ति। और भक्ति के गुण कितने बतलाए गए? 6। तो एक भक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा? 2। तो किसका कौन हिस्सा है यह भी जानना होगा। एक भक्ति को 2 हिस्सा मिला, लेकिन किसका कौन हिस्सा है ये जानना होगा। तो कहने का आशय है कि भक्ति के 6 गुण हैं, लेकिन जब भक्ति अभी साधन भक्ति के स्तर पर है तो उसमें केवल 2 गुण उभरेंगे। कौन कौन? क्लेशाग्नि और सुभदा। भक्ति साधना स्तर की है तो दो गुण उभरेंगे, कौन कौन? क्लेशाग्नि और सुभदा। और जब भक्ति भाव स्तर पर पहुंच जाएगी तो दो गुण और बढ़ जाएंगे, कौन कौन? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। तो कितने गुण हो गए? चार। और वही भक्ति जब प्रेम के स्तर पर चले जाएगी तो दो गुण और बढ़ेगा, कौन कौन? तो प्रेम स्तर पर भक्ति के कितने गुण प्रकाशित हो जाएंगे? छह। तो गणित बिल्कुल क्लियर है ना? तब संस्कृत से कोई कठिनाई आ रही है? तो आप लोगों के कोर्स में यही सब चीज है। वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति के गुण को लिखिए और किस भक्ति से संबंधित है यह दिखाइए। तो भक्ति के कितने गुण बतलाए गए? छह। और ये तीन भक्ति से कैसे संबंधित है? साधन भक्ति के दो गुण हैं, कौन कौन? क्लेशाग्नि और सुभदा। और भाव भक्ति के दो गुण अपने हैं, दो तो पहले से ही है, तो चार गुण उसके हो जाएंगे। दो गुण इसका है भाव भक्ति का, कौन कौन? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। और प्रेम भक्ति के दो गुण कौन कौन? सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षणी। इतना एक बिल्कुल क्लियर है ना? इसको लिखिए, फोटो खींचिए, जो कीजिए, लेकिन कॉपी में ही मत छोड़िएगा या मोबाइल में मत छोड़िएगा। फोटो खींच रहे हैं तो एक कॉपी इधर भी सेंड कीजिए। केवल मोबाइल में फोटो खींचने से नहीं होगा, एक कॉपी अपने दिमाग में भी मैसेज कर देना है। हाँ, एक क्लेश हनी। और कंप्यूटर वालों का यही दोष है ना, अब ओरिजिनल ले दिया, अब कंप्यूटर में जो अक्षर मिलेगा वही लिखेगा ना, अब कठिनाई नहीं है ना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अब आपकी कठिनाई खत्म हो गई ना। बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो इस विषय में? हाँ, वो तो आएंगे ही, अभी तो क्लेश खत्म होता है ना। अभी सब क्लेश में मरे जा रहे हैं, तुमको शुभ की चिंता लग गई। फिर से श्लोक बोल दीजिए बिना देखे। फिर से ठीक। क्लेश का क्या अर्थ है, कौन बतलाएगा? आए, भौतिक कष्ट। ठीक, भौतिक कष्ट का कारण क्या है? आए, क्या भौतिक कष्ट का कारण है? पाप। और पाप का क्या कारण है? तो अविद्या और पाप का क्या रिलेशन है? अविद्या से क्या होता है? देहात में बुद्धि, इसी को तो अविद्या कहते हैं। अविद्या का क्या प्रभाव आता है? अविद्या का इमीडिएट असर कहाँ आता है? चित्त के ऊपर। तो क्या असर आता है चित्त के ऊपर? नहीं, ये तो अविद्या है, इसका असर क्या आता है? हाँ, स्वरूप की विस्मृति हो गई, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? भोग की इच्छा। बड़े बड़े व्यास लोग इसमें बैठे हैं। कुंती देवी की स्तुति का श्लोक है, भवेस्मिन क्लिश्यमानाना, क्लिश्यमानाना, भौतिक कष्ट भोग रहे हैं। भोग के पीछे कारण क्या है? अविद्या, काम, कर्म। तो तीन स्तर हुआ ना, अविद्या, काम, कर्म। जब व्यक्ति स्वरूप को भूल जाता है तो भोग की इच्छा उदित होती है। अब भोग की इच्छा उदित हुई तो ऐसे तो भोग मिलेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ कर्म करते हैं। तो सीक्वेंस है अविद्या, काम, कर्म भी। अविद्या, काम मतलब वासना, इच्छा, भोग की इच्छा, और इसके बाद कर्म। लेकिन यहाँ हम लोग इसको उल्टे क्रम में चलेंगे, क्योंकि सबसे स्थूल है कर्म, पाप, और पाप से सूक्ष्म है वासना, और वासना से भी सूक्ष्म है अविद्या। तो स्थूल से सूक्ष्म के तरफ बढ़ेंगे। तो ये पन्ना इन लोगों को मिल गया है, तो पन्ना बांटे, पन्ना तो है ना, लाए है नहीं आए, लाए नहीं है? हाँ, ये तो है ना, ठीक ठीक, इसी को इसी को, तो ये हाँ ठीक। क्लेशास्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेतु। अब क्लेश को समवेत रूप से कहेंगे, होलसेल के भाव में क्लेश को कहना होगा, तो उसके तीन पर्व हैं। एक्चुअली ये क्लेश दूसरे जगह आप पढ़ेंगे तो उसको पंचपर्वा कहा गया है। अविद्या और क्लेश एक ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योग शास्त्र में इसी को क्लेश कहा गया है। योग शास्त्र में क्लेश का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेश का क्या अर्थ है? पाप तद्बीजम अविद्या चेति। कोई कोई चीज है कि समवेत रूप से उसको कह दिया जाता है। जैसे इस्कान वृंदावन, इस्कान वृंदावन कह रहे हैं, तो अब इसमें मंदिर है, गोशाला है, गुरुकुल है, क्या क्या हो जाता है ना। जैसे इसको तो अंगुली कहेंगे, अंगुली कहते हैं ना, लेकिन इसके तीन खंड हैं, तीन खंड है, तो तीनों खंडों को मिला करके अंगुली कहते हैं ना। देख रहे हैं, त्रिपर्वा, ये अंगुली को कहा जाएगा त्रिपर्वा, तीन पर्व है, पर्व इसको कहते हैं, पोर, बांस का पर्व कहते हैं ना। तो उसी तरह ये जो क्लेश है त्रिपर्वा है, इसके तीन खंड हैं, कौन कौन? पाप और उसका बीज, तद मतलब पाप का बीज, वासना को पाप का बीज कहते हैं, क्योंकि वासना ही क्रिया के रूप में आता है, और वासना का भी मूल कारण है अविद्या। तो क्लेश मान लीजिए कि आप लोगों से भक्ति रसामृत सिंधु में कोई प्रश्न कर दे कि क्लेश का क्या अर्थ है, तो क्या कहेंगे? पाप, उस वासना, पाप की वासना और अविद्या। क्लेश माने पाप तद्बीजम अविद्या चेति, है च इति संस्कृत है ना, चेति मतलब चेत जाओ। क्लेश मतलब बाबा पाप, पाप का बीज और अविद्या, सुन रहे हैं ना? क्लेश का इतना अर्थ होगा, यह नहीं कि रोटी का अभाव है यह क्लेश है। टेक्निकली क्लेश का अर्थ होगा पाप, पाप का वासना और अविद्या। ये पाप का भी दो खंड होता है, पाप भी दो खंड में है, अप्रारब्ध भवेत पापम, प्रारब्धम चेति तद्विधा। पाप कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, कौन कौन? अप्रारब्ध और प्रारब्ध। आए हाँ, कॉपी मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये लाया नहीं, सब तैयार भी नहीं किए हो? ये शुभ कृष्ण के तरफ से गिफ्ट रहेगा। पहले मैं खुद ही करा करके देता था, लेकिन इस समय तो हम लोगों के बड़े मैनेजर साथ में है, तो इनको यह सेवा दी गई है। वैसे मैं कागज दे दिया हूँ, आए हाँ, इसको मैं कहा था कि वो कर करके। ये प्रथम लहरी का पूरा आप लोगों को संस्कृत शब्द मिल जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि संस्कृत शब्द से आप लोगों को सुविधा हो जाएगी, याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। कल मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी इतना ही ध्यान रखिए कि क्लेश का अर्थ है पाप, पाप का बीज और अविद्या। वो पाप के भी दो भाग हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो ये सब क्या है, अप्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध क्या है, एक एक चीज का हम लोग खूब अच्छा से वर्णन पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। और एक्चुअली सबसे कठिन अंश यही होता है, और कुछ लोगों को ये होगा कौतुक कि मैंने ये पन्ना क्यों बांट रहे हैं, लेकिन हमको भी अनुभव हो गया है, मैं भी पढ़ाता रहता हूँ, इससे सुविधा होती है, खास करके आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में बहुत सुविधा होगी। हाँ, कुटम बीजम आएगा, वो भी आएगा, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। तो अभी हम लोग आज क्या क्या पढ़े, भक्ति की परिभाषा पढ़े और भक्ति के गुण पढ़े, भक्ति के छह गुण, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेष आत्मा, प्री कृष्णा कर्षणी। तो अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ समझ ही गए, लेकिन अब अभी अंतर होगा कि कृष्णा कर्षणी न लिख करके क्या लिखे हैं, प्री कृष्णा कर्षणी। अरे भाई आनंद स्वरूप है तो सांद्रानंद आत्मा लिखना चाहिए, तो लिख रहे हैं विशेष आत्मा। तो ये सब हम लोग समझते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ भी कठिनाई लगे तो पूछना चाहिए, पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा अनुभव रहा है कि जो भक्ति शास्त्री कर चुके हैं अब वे परमिशन लेकर के बैठ गए, अब दुनिया भर का सवाल वही पूछते रहते हैं, किसी दूसरे बच्चे के समस्या का अवसर ही नहीं मिलता। इसी से मैं कह दिया कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका प्रथम अधिकार रहेगा। तो प्रश्न जो पीछे जो भी आप पढ़े हैं तो उसको पूछ सकते हैं, और जो मंगलाचरण का कुछ अंश है तो किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण थोड़ा कठिन होता है, श्रीमद् भागवतम का जन्मादस्य श्लोक थोड़ा कठिन ही है, तो उस पर हम लोग फिर से एक बार आएंगे। और आप लोग पहले से ही कुछ योजना कर लीजिए, यदि रेगुलर वे में चलेंगे तो एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब पीछे का तो यही अनुभव है कि 25 क्लास था फिर भी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी, 24 क्लास था फिर भी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी, इस बार 21 क्लास दिया गया है। अब जो क्लास बांटने वाले हैं सीधा 21 चैप्टर है, इसलिए 21 क्लास दे दिए हैं, जो हो उसमें भी किया जा सकता है, हमारे तरफ से कोई कठिनाई नहीं है, हम तो 15 क्लास में भी पूरा किए हैं नोएडा में। ठीक है, अब अटेंडेंस इतना कलम नहीं।